शांति। गीत सुना हम सबने, बाबा तुम कितने अच्छे हो। तो बाबा अच्छे हैं तो बाबा के बच्चे कैसे होंगे? तो हम सब कौन है? बहुत अच्छे बच्चे हैं। फिर भी अच्छा बनने का पुरुषार्थ बाबा हम सब से कराते रहते हैं, जो बाबा कई दफा मुरलियों में जिक्र करते हैं। इस सृष्टि के ऊपर अच्छे से अच्छा कौन है? लक्ष्मी नारायण। तो वो सारे लक्षण, वो सारे गुण, वो सारी सिफतें, विशेषताएं हम सब आत्माओं के अंदर विद्यमान हैं। मौजूद हैं, पहले से ही हैं ऑलरेडी, उन्हें केवल स्मृति का जल देने की आवश्यकता है। इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत नहीं करो, केवल अपने मूल स्वरूप की स्मृति में स्थित रहो। जब हम उसको भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, बेहोशी की अवस्था में चले जाते हैं, तो फिर मेहनत लगती है, मुश्किल लगता है, भारी लगता है, बोझ लगता है, उदासी रहती है। और जब हम स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, नेचुरल याद रहती है, तो हल्कापन फील होता है, खुशी आती है। तो बाबा को याद करने के हमारे पास सरल से सरलतम उपाय होने चाहिए, मुश्किल नहीं। जो बाबा कई दफा कहते हैं याद करना ना पड़े, बल्कि निरंतर योगी बन जाए, भूलना मुश्किल हो जाए। जिससे हमारी प्रीत होती है उसको भूलना मुश्किल होता है। तो प्रीत तो हम सबकी भगवान से, बाबा से तो है ही है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें हमारी स्वयं की स्वयं से प्रीत कितनी है। दूसरों से प्यार करना आसान काम है, स्वयं से प्यार करना मुश्किल होता है। क्योंकि जो हमारे स्वयं के पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, वो कभी कभी हमें युद्ध करने के लिए उत्तेजित कर देती हैं, संघर्ष करना पड़ता है। कई बार अपने संस्कारों की चुनौतियों का ही सामना करना पड़ता है, जो कि वास्तव में हमारे है नहीं है। बाबा कहते हैं वो तो रावण के संस्कार हैं, माया के संस्कार हैं, हमारे संस्कार नहीं हैं, लेकिन हमने उनको अपना बना के रख दिया है। क्योंकि हमारी फितरत में है, दूसरे की चीज जब भी हमारे हाथ में आती है या कोई हमको देता है, छोटी सी चीज भी, भले वो 5 रुपए की क्यों ना हो, अगर किसी ने दी, उसी समय हमारा उससे ममत्व जुड़ जाता है। जिसने दी है उसके प्रति कम हो जाएगा, लेकिन वो चीज के साथ जुड़ जाता है। ऐसे ही हाल हमारा हमारे संस्कारों से, जो हमारे हैं नहीं है, जो बाबा ने कहा कठोर संस्कार, आज के वरदान में था ना, वो कठोर संस्कार ही हमें तड़फाते हैं, भटकाते हैं, भारी करते हैं, बोझिल कर देते हैं, याद को मुश्किल कर देते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा में रहो, याद बढ़ती जाएगी, लगन बढ़ती जाएगी तो विघ्न हटते जाएंगे, था ना मीठे बच्चे में। तो याद की हमको सरल से सरल युक्तियां स्वयं ही निकालनी है, क्योंकि वो सबकी अपनी अपनी हो सकती है। जब से हमको ज्ञान मिला तो हमें जो प्रदर्शनियों के चित्र दिखाए जाते थे, अगर उनको ही हम कंठस्थ कर लें तो भी हमारी निरंतर याद बनी रहे। इसलिए बाबा कहते हैं चित्रों के आगे बैठो। मुरलियों के पॉइंट याद में नहीं भी रहते हैं, लेकिन प्रदर्शनी तो हमको याद रहती है किसी न किसी तरीके से। तो हम कुछ दिनों से एक अभ्यास कर रहे हैं और बहुत अच्छा है वो, कि बाबा के जो चित्र हैं उसमें से सबसे मुख्य चित्र कौन सा है, सबका अपना अपना हो सकता है। लक्ष्मी नारायण है जी, हाँ, तो मुख्य चित्र को तो बाबा का ही है। तो एक चीज अगर हम करके देखें, जो हमने भी एक्सपीरियंस किया, आप भी कर सकते हैं, और बड़ा सहज काम है, मुश्किल नहीं है, लेकिन सुनते हम बोझिल हो जाते हैं, कितना ये तो याद नहीं रहेगा, लेकिन बहुत आसानी से उसको याद किया जा सकता है। तो बाबा का जो चित्र है 32 गुणों वाला, केवल उसी को याद कर लीजिए और उसी को बार बार रिपीट करते रहिए, उस पर चिंतन करते रहिए, मनन करते रहिए, तो जो 32 गुण हैं वो हमें स्पर्श करते रहेंगे, उनकी शक्ति ना केवल 32 गुण बल्कि 32 गुणों तो क्या अथाह जो गुणों का सागर है, वो हमारे सिर पर छत्रछाया के रूप में अनुभव होता रहेगा। जिससे हमारा प्यार होता है उसकी बात को अगर हम याद रखते हैं तो उसको याद करना फिर मुश्किल नहीं होता है, नेचुरल होता है। उसके स्वभाव, उसके संस्कार, उसके साथ उठना बैठना, बातचीत करना, वो सारी चीजें स्वतः याद आती हैं। लेकिन उसकी बात से प्यार होगा और उसकी बात को हम तवज्जो देंगे, महत्व देंगे उस चीज का, तो उससे प्यार बढ़ेगा। इसी को ही महत्व, क्योंकि बिल्कुल उसमें सारा कुछ ही समाया हुआ है। कई दफा मेडिटेशन यही मेडिटेशन करते हैं, कई बार मन बुद्धि भटकने के चांस होते हैं तो बस ये 32 मिनट पकड़ लेते हैं और वो कब टाइम पता चल बीत जाता है, जैसे घंटे सेकंड में लगते हैं। और ऐसा नहीं 32 को रिपीट करना है, फिर कोई एक ऐसा गुण आता है जिसमें खो जाते हैं। तो ये हमको अपने से प्रतिज्ञा करनी है, क्योंकि ज्ञान का विस्तार बहुत है, लेकिन जो मूल फाउंडेशन हमारे हाथ में होना चाहिए वो कहीं निकल ना जाए। जो बाबा के संस्कार हैं वो ही हमारे संस्कार हैं, जो बाबा के गुण हैं वो ही हमारे गुण हैं, तो उसमें हमको सिर्फ मास्टरी कर लेनी है। तो 32 के 32 गुण याद करने हैं सभी को, करेंगे ना, और बहुत आसान काम है। अभी मान लीजिए बोलेंगे बड़े मुश्किल है, तो किसी ना किसी के 32 रिश्तेदार तो होंगे ना, है कि नहीं है, उनको याद करना मुश्किल होता है। रिश्तेदार 100 होते हैं, बराबर सारे याद रहते हैं। अच्छा कोई बिजनेसमैन है, 32 लोगों से संपर्क के मुश्किल होता है उसको, कैसे मन बुद्धि पूरा एकाग्र हो जाता है, एकाग्रता कम नहीं होती वहां, तो यहाँ एकाग्रता की कमी क्यों होती है फिर? और बाबा तो कहते हैं मैं तो सर्व संबंधों की सैकरीन हूं, सारे रिश्ते तो तुम्हारे मेरे में समाये हुए हैं। उस सैकरीन, उस मिठास का अनुभव करने के लिए उसके जो गुण है, उसकी जो सिफतें हैं, उसमें हमें अपने आप को पूरा झोंक देना है, उसके समान बन जाना है। नहीं तो लंबे समय से हमारा पुरुषार्थ रहता है बाप समान बनना है, बनना है, बनना है, बनना नहीं है ही है। उसी को अगर पूरा महत्व देंगे तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, बाबा के 32 गुण पर। याद है किसी को? वेरी गुड, माता जी को याद है। देखो और कौन है? दो, दूसरी माता जी, तीन, बहन जी तीन, चार, पांच, तो हमको याद कर लेने अच्छी तरह से, भूलने नहीं है फिर ये। नहीं तो इतना हम ज्ञान पढ़ते जा रहे हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे होता जा रहा है। केवल लक्ष्मीनारायण के आगे बैठ जाओ, उनकी ड्रेस को देखो, उन्होंने क्या क्या गहने पहने हुए हैं, और बाबा हमको कौन से गहने, कौन से आभूषणों से सुसज्जित कर रहे हैं, दिव्य गुणों को गहने, गुण कितने हैं, दिव्य गुण कितने हैं, बाबा के गुण कितने हैं। नहीं तो जो ज्ञान है ना, केवल दीवारों तक ही सीमित रहता जा रहा है। हमारे जीवन में, हमारे जहन में, हमारे कर्मेंद्र में कब आएगा? जब तक ज्ञान हमारे कर्मेंद्रियों में नहीं समाया तब तक नेचुरल योगी नहीं बनेंगे। क्लासें कराने वाले चले जाएंगे, सुन के भी चले जाएंगे, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए मधुवन में आने का सौभाग्य मिला है हम सबको, तो हम भगवान की गोद में बैठे हुए हैं। सबसे सुरक्षित स्थान है ये, एकदम महफूज है, जहां किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। केवल अपने आप से प्रीत करनी, परमात्मा से प्रीत करनी है। तो जैसे परमात्मा का स्वरूप है वो अशरीरी अनियंत्र, वो अशरीरी का अनुभव अपने आप ही होने लगेगा। हमें संकल्प करने की आवश्यकता नहीं मुझे अशरीरी बनना है, वो तो हम हैं ही हैं। उसके गुणों का चिंतन करेंगे तो उसके स्वरूप की अनुभूति स्वतः ही होने लगेगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। लंबे समय तक वो गुण जब हमारे संस्कारों में समा जाएंगे, हमारी रगों में समा जाएंगे, नस नस में समाए जाएंगे, खून के कतरे कतरे में समा जाएंगे, तो नेचुरल हो जाएगी, याद स्वतः होगी, सहज होगी, करना नहीं पड़ेगा। तो बाबा के जो 32 गुण है, सबसे पहला वो गुणों का सागर है। अब गुणों का सागर है, हम देखेंगे जब भी हम डेली जो मुरली सुनते हैं ना, साकार मुरली, वो सारे 32 के 32 गुण बाबा के उसमें समाये होते हैं। अगर थोड़ी बारीकी से देखेंगे, तन्मयता से, एकाग्रता से, गहराई से, तो सारे गुण उसमें समाये होते हैं। हर एक मुरली में लगभग आता है बाप ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है। तो वो गुणों का सागर है, महसूस करना है, फिर उसका लंबा चिंतन किया जा सकता है। महसूस करना है जैसे गुणों की हवा चल रही है, परमात्म गुणों की हवा चल रही है और वो मेरे से स्पर्श कर रही है। स्थूल में भी अनुभव करना है वो, और जैसे वह हवा स्पर्श कर रही है, मैं जैसे देह की शुद्ध बुद्ध से परे हो गया हूं। महसूस करना जो उसकी हवा स्पर्श करते ही देह अलग और देही अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग। लंबे समय की साधना, लंबे समय का अभ्यास वो अनुभूति को गहरा कर देगा। फिर उसके गुण कौन कौन से हैं और उस पर चिंतन करना, केवल गुणों का सागर आगे नहीं निकल जाना, उसी पर रुक जाना है। उसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो क्यों गुणों का सागर है, हमें उन गुणों को क्यों ग्रहण करना है, कैसे उसने हमें उन गुणों को अपने में आत्मसात करने के लिए कौन कौन सी शिक्षा दी, कौन कौन सी सावधानियां दी, उसी पर थोड़ा ठहर जाना है। महसूस करना जैसे उसके गुणों की बरसात हो रही है, जैसे उसके प्यार की, मोहब्बत की बरसात हो रही है, जैसे वो मेरे लिए आया हुआ है। आज की मुरली में था ना, तुम बाप को ऐसे महसूस करते हो जैसे वो पास में बैठा सन्मुख है। वो कितने सुंदर महावाक्य आते हैं, तुम्हारी बुद्धि में चमत्कार आया है, कल के महावाक्य थे, कितने जबरदस्त महावाक्य हैं। छोटे छोटे महावाक्य होते हैं। एक मुरली में था, निराकार बाप साकार ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों से हैंडशेक करते हैं। 28 अप्रैल की मुरली थी पिछले साल की। तो कितने जबरदस्त महावाक्य, उसको अनुभव करना है कि वो मेरे से हैंडशेक कर रहा है, वो मेरे से स्पर्श कर रहा है, जैसे वो मेरे इंतजार में है कि मेरा बच्चा कब आए और मेरे से हैंडशेक करे और कब मैं उसको सारी शक्तियां ट्रांसफर कर दूं, जैसे बड़े दादी जी को ट्रांसफर की। हम भी तो उसी कुल के हैं ना, उसी वंश के तो है ना। तो बाबा भी हम सबको अपनी शक्तियां, अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी मिल्कियत जायदाद देने के लिए सामने खड़ा है, वो हैंडशेक करने के लिए। तो इमेजिनेशन करना है। जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, अमृत वेले, नुमा शाम, दिन में कभी भी मौका मिले, नए नए तरीके से उसको अनुभव करना है कि वो मेरे साथ में है, वो हैंडशेक करने के लिए मुझे कॉल कर रहा है, मुझे बुला रहा है, वो इंतजार में खड़ा है कि कब मैं अपनी सारी शक्तियां बच्चे को बिल कर दूं। लेकिन बच्चा आके अपने मोबाइल में बिजी है, व्हाट्सएप चलाने में बिजी है, पोतरों से बात करने में बिजी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हम पुरुषार्थ में नवीनता लाएंगे, रोचकता लाएंगे, रुचि जब हमारी बढ़ जाएगी, तो पुरानी बातें छोड़नी नहीं पड़ेंगी, वो स्वतः ही गौण हो जाएंगी, छूट जाएंगी वो। नहीं तो हम सोचते क्या है कि हमको गुस्सा आता है या हमारी बुराइयां छोड़नी है, ये तो संकल्प करना ही नहीं अपने को, वो तो स्वतः ही छूट जाएंगी जब हम नई चीज को पकड़ना आरंभ कर देंगे। नई चीज का स्वाद, नई चीज का टेस्ट जब बैठ जाएगा, पुरानी चीज अपने आप ही रसहीन हो जाएंगी, वो निरर्थक हो जाएगी, उसके प्रति हमारी रुचि बढ़ेगी नहीं। नई चीजों में रुचि पैदा करनी है और नई चीजों को नए दृष्टिकोण से देखना है। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग नवीनता का युग है, हर बात में नवीनता चाहिए। मुरली सुनने में नवीनता, क्लास सुनने में नवीनता, मुरली सुनाने में नवीनता, योग में नवीनता, सेवा में नवीनता, ये नवीनता का युग है। सोचने में नवीनता, देखने में नवीनता। देखने में क्या नवीनता है, देखने में क्या नवीनता है, आत्मा देखना, ये तो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, दिखती तो है नहीं। और क्या नवीनता, ये तो ये भी नवीनता ही है, आत्मा देखना और विशेषताएं देखना और जो दिखाई दे, हाँ जी, देवकुल की आत्मा सोमान से देखना है और ऐसे देखना है सबके ऊपर के सिर के ऊपर शिव बाबा बैठा हुआ है। हम कई दफा योग में ऐसे करते हैं, अपना योग नहीं लगे ना, अगर दूसरों की तरफ ध्यान जाता तो बस यही संकल्प करते हैं कि इनके सिर के ऊपर शिव बाबा, तो अपना योग तो वैसे लग जाएगा। परमात्म शतरशाह सबके ऊपर स्थिर है, परमात्म प्यार बरस रहा है सबके ऊपर। देव जैसे बताया भाई जी ने, देवकुल की महान आत्माएं हैं और ये संपूर्ण अवस्था के नजदीक पहुंचने वाली है, बहुत जल्दी शरीर छोड़ने वाली है। जाना तो है ना वापस हम सबको, क्योंकि अगर वापस के टाइम है अभी तो ये शरीर छोड़ने वाली अर्थात ये स्वेच्छा से जाने वाली है। तो क्या हम मैं वैसे तैयार हूं जब चाहे हम शरीर से डिटैच हो जाए या शरीर छोड़ के चले जाए। हमारे भारतीय संस्कृति में तो पुरातन संस्कृति में तो कई दफा हम सुनते थे ना साधु सन्यासी लोग स्वेच्छा से शरीर छोड़ देते थे, तो हमें भी तो वही प्रैक्टिस करनी है ना। तो नया दृष्टिकोण, इस देह के अंदर आत्मा मणि चमक रही है, ये देह क्या है, ये देह एक मंदिर है, इस मंदिर के अंदर आत्मा रूपी मूर्ति विराजमान है। कैसे विराजमान है, वरदानी मूर्त में खड़ी है। मंदिर वो नहीं है, यही देह रूपी मंदिर है। ये कितने चैतन्य मंदिर बैठे हुए हैं, इन चैतन्य मंदिरों के अंदर जो मूर्ति विराजमान है उसके आगे असंख्य आत्माओं की लाइन लगी है, असंख्य भक्तों की लाइन लगी है। जब हम इस तरह की स्मृतियों में स्थित हो जाते हैं तो स्वतः एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा क्रिएट होती है, नए खुशी के प्रकंपन हमें प्रफुल्लित करते हैं, आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, उड़ने के पंख लग जाते हैं। वो आत्मानुभूति अपने आप ही होने लगेगी क्योंकि हम देह के विचारों से ऊपर उठ गए, देह की दुनिया से हम थोड़ा बाहर निकल गए। अभी हमने उस दरवाजे में प्रवेश किया है जिस दरवाजे के अंदर इस संसार का कोई भी संकल्प नहीं है, कोई भी दृश्य नहीं है। ये ज्ञान जो हमको इस संसार से तो ऊपर ही लेके जाता है ना, देह की दुनिया से ऊपर ही उठाता है। देह क्या है, मिट्टी है। बाबा ने कल कहा मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, कल की साकार मूल्य में था। तो हम तो इस मिट्टी को छोड़कर सोने के गेट में प्रवेश कर रहे हैं, स्वर्ग। स्वर्ग है कहां, यही जीवन स्वर्ग है, उस स्वर्ग की प्रतीक्षा नहीं करनी है, यही जीवन स्वर्ग है। मैं ही देव ही हूं, मैं ही देवता हूं, अभी ही उसकी अनुभूति करनी है। नहीं तो इंतजार में कितने तो साल बीत गए और बाकी कितना समय, भरोसा तो है नहीं। अब भी स्वर्ग की अनुभूति करनी है, इसी देह में अनुभूति करनी है। बाबा जो कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कब करना है, कब, संगम पर नहीं, अभी अभी इसी बात, अभी 9:05, 8:55 पर अभी अनुभूति करो कि मैं देवता ही चोले में बैठी हूं, मैं देवता ही चोले में बैठा हुआ हूं। सिर पर क्या लगा हुआ है, ताज, कौन सा ताज, रतिन जड़ित, और पीछे क्या है, लाइट दिख रही है, या फिर किसी का चिंतन चल रहा है, लड़ाई झगड़े गई, ये पड़ोसी क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कौन सा ताज चमक रहा है। तो वर्तमान में उसी उन्हीं संकल्पों के साथ जो हम जिएंगे वो ही हमारी भविष्य की प्रारब्ध बनती है। भविष्य के प्रारब्ध का आधार वर्तमान के हमारी संकल्प की संपदा है। हमारी संकल्प रूपी पूंजी कितनी उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, पवित्र है, प्योर है, वो डिपेंड करता है हमारे पास शुद्ध संकल्पों का खजाना कितना है, कितने अंश अर्जित किए हुए हैं। और जरूरी नहीं वो मुरली से, सारे मुरली से ही मिलेंगे, लेकिन जब हम संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी हमको संकल्प ऐसे खींच ले रहे हैं उनके अंदर से ही, उनकी चाल चलन से, उनके चित्र और चरित्र से, उनके चरित्र अर्थात उनके जो व्यवहार है, जो चित्र दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है, उसकी चाल चलन से और चरित्र अर्थात संस्कारों से, उनके बोल से। भले कोई नेगेटिव ही बोल रहा है उससे भी हमको बाबा कहते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। परसों का स्लोगन था, क्या स्लोगन था, अपने डैश द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ठीक बोल रहे, थोड़ा दबी आवाज से क्यों, थोड़ा खुल के बोलो, पास फेल होने की तो बात ही नहीं है इधर। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, क्योंकि लंबे समय तक हम नेगेटिव तो देखते आए हैं, उसी तो दुनिया में रह रहे हैं। तो नेगेटिव को देखते हुए पॉजिटिव में परिवर्तन करने की कला, तो ये जो बाबा के गुण धीरे धीरे आते जाएंगे, तो पहला है बाबा गुणों का सागर है, दूसरा है बाबा दिव्य दृष्टि दाता है। महसूस करो जैसे हम वहां बैठे हैं और केवल मैं अकेला हूं, अकेली हूं, बाबा के सामने बैठी हूं और बाबा पूरी दृष्टि मुझे दे रहे हैं, आसपास कोई नहीं है, बस अलोन, अकेले हम दोनों हैं, मैं और बाबा, और सारी दृष्टि, सारी शक्ति बाबा ने जैसे मेरी आंखों में ट्रांसफर कर दी, वो सारी शक्ति जैसे पूरे कर्मेंद्रियों में समा गई है, वो सारी शक्ति जैसे रग रग में बस गई है, वो सारी शक्ति जैसे बिजली की करंट की तरह दौड़ रही है शरीर में, जैसे आसमान में बिजली कौंधती है आसमान से, ऐसे वो परमात्म शक्तियों का करंट बाबा की दृष्टि से निकलकर जैसे मेरे में समाता जा रहा है। ऊर्जावान संकल्प चाहिए, जिन संकल्पों में थोड़ी आग हो, नवीनता हो। तो दृष्टि बाबा निरंतर मुझे दे रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बच्चा आए और मैं उसको दृष्टि दूं। लेकिन हमारी दृष्टि बताया ना मोबाइल में अटकी रहती है। यूज करना उसका भी लाजमी है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं करना, यूज तो अच्छी तरह करना उसका। बाबा कहते साधन तो तुम बच्चों के लिए ही है, लेकिन वो साधन हमारी साधना में कहीं ना कहीं बाधा ना उत्पन्न कर दे, साधना को कम ना कर दे, वो साधन हमारी साधना में सहायक बने, अर्थात हमें आगे बढ़ाए। क्योंकि साधन आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो हमारे मन के अंदर मस्तिष्क के अंदर छप जाएगा वो हमारा परमानेंट अपना खजाना हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके 24 आवर में जितना भी ज्ञान हम अर्जित करें हमारे अंदर में छप जाए, वो भले एक मुट्ठी से दासी अक्षर दासी लफ्ज हमारी बुद्धि में छप जाए। अगर सारी मुरली याद नहीं रहते केवल एक स्लोगन ही याद कर लो और सारा दिन सवेरे से लेकर शाम तक उसी को रटते रहो, क्या था स्लोगन, क्या था क्या था क्या था। वरदान याद कर लो, एक दिन एक वरदान, दूसरे दिन दूसरा वरदान, 30 दिन के बाद 30 वरदान हमारे हाथ में होंगे और 30 दिन के बाद हम वो नहीं रहेंगे जो पहले दिन में थे, महापरिवर्तन दिखाई देगा। हमारा योग साधारण नहीं रहेगा, योग अग्नि का रूप ले लेगा, योग ज्वालामुखी बन जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर वो परमात्म शक्ति है, परमात्म ज्ञान हमारे अंदर समा गया हुआ है। हमने दूसरे संकल्पों को आने की मार्जिन नहीं दी है, उसी को हम रिपीट करते रहे, बार बार रिपीट करते रहे। ये ना सोचे रिपीट करने से क्या होता है, रिपीट करने से बहुत कुछ होता है। हमारे अंदर जन्म जन्म की जो नेगेटिव ऊर्जा वो अपने आप ही आउट हो जाएगी, जो मायावी संस्कार है अपने आप ही ध्वस्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, भस्मीभूत हो जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। वो तो उसको बार बार रिपीट करते हैं। जैसे आज का वरदान है, कौन सा वरदान था, डैश डैश भाव, सहनशीलता के गुण द्वारा अपने कठिन संस्कारों को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भाव, इसी को बार बार रिपीट करते रहो तो उसमें अपने कठोर संस्कार भी हमें पता चलेगा कौन कौन से हैं। क्योंकि लंबे समय तक साधना हमारी जब निरंतर चलती रहती है, निर्विघ्न चलती रहती है, अचानक तूफान आएंगे। फिर ऐसा नहीं कि 10 साल के बाद हमें कोई विघ्न नहीं आया, 10 साल के बाद विघ्न नहीं आएगा, आएगा जरूर, अंत तक आएंगे भावना। किसी भी जन्म का कोई भी संस्कार कभी भी जागृत हो सकता है अगर हमारा मन कमजोर रहा तो। इसलिए मन को शक्तिशाली बनाने के लिए इस ज्ञान का चिंतन करते रहना है। ज्ञान एक प्रकाश है, तलवार है जो हमारे बंधनों को काट देता है। उस ज्ञान की अग्नि निरंतर प्रज्वलित करके रखनी है। जैसे बाबा योग को भी अग्नि कहते हैं, ज्ञान भी क्या है, प्रकाश है, अग्नि है, निरंतर वो धधकता रहे। तो बाबा है दिव्य दृष्टि दाता। कितने हो गए, अच्छा दो ही हो, अभी तो बहुत है, ठीक है। तीसरा है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। तो सोचो हम ब्रह्मा के साथ में हम ब्राह्मण बच्चे भी बैठे हैं, क्योंकि हम एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं जो बाबा कहते हैं। ब्रह्मा के माध्यम से तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो जो ब्रह्मा के कर्तव्य वो ही मेरे कर्तव्य, जो ब्रह्मा के संस्कार वो ही मेरे संस्कार, जो ब्रह्मा का त्याग वो ही मेरा त्याग, जो उसकी कुर्बानी है, जो उसका बलिदान है वो ही मेरी त्याग तपस्या, मेरी रग रग में सुनाई है। स्थूल और सूक्ष्म फिर दोनों करने हैं वो। तो ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करने वाले, तो क्या मैं भी उस ब्रह्मा बाबा की तरह नई सृष्टि की स्थापना करने में तत्पर हूं, अर्थात नए संस्कार, स्वयं की सृष्टि को नया बनाना है। दूसरे की सृष्टि अपने आप ही नई बन जाएगी। स्वयं अच्छा चश्मा पहन लेंगे, दूसरों को भी उसी रंग से देखेंगे। स्वयं को अपने आप को विशेषताओं से भर लेंगे, दूसरों को भी विशेषताएं दिखाई देने लेंगी। स्वयं के अवगुणों का चिंतन करेंगे, दूसरों में भी अवगुण दिखाई देंगे। इसलिए बाबा कई दफा कहते हैं जिस रंग का चश्मा पहनते हो वही रंग दूसरों का भी दिखाई देगा। तो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करने वाले। फिर है कर्मों की गति को जानने वाले। आज बाबा ने प्रश्न में कहा, क्या प्रश्न में कहा, जानने वाले, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले। आय की मुरली में था, क्या था? जो कर्म हम करेंगे वो दूसरे नहीं करेंगे, आज हमको देख के दूसरे करेंगे। हाँ ठीक सुन रहे, जो कर्म हम करेंगे हमको देख के दूसरे करेंगे। एक ही मावा के हमारी जीवन भर की जो जीवन शैली है उसको बदलने में पर्याप्त है। जो कर्म मैं करूंगा, जो संकल्प मैं करूंगा, जिस दृष्टि से मैं रहूंगा, ऐसे सबके संस्कार बनेंगे, ऐसे सब कर्म करेंगे, ऐसे सबका जीवन बनेगा। कितनी बड़ी जवाबदारी है। तो बाबा कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले हैं, तो क्या मेरे कर्म वैसे हैं, मैं कर्मों की गुह्य गति से अनभिज्ञ तो नहीं हूं, उससे अच्छी तरह जानकार हूं, अवगत हूं। फिर बाबा ने कर्मों के बारे में बताया कैसे कर्म अकर्म विकर्म, वो सारा बुद्धि में घूमता रहेगा। फिर बाबा नेक्स्ट है काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। आज की मुरली में भी जिक्र था, कौन सा बाबा काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, धर्मराज का। सारे 32 के 32 गुण मुरली में घूमते रहते हैं किसी न किसी तरीके से, कि सतयुग में धर्मराज की आवश्यकता नहीं है अभी। धर्मराज और धर्मराज वास्तव में चीज क्या है, धर्मराज चीज क्या है? 17 तारीख का स्लोगन था, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप है, यही धर्मराज की सजा है। जब भी हम कोई ऐसा वैसा कर्म करते हैं दुख तभी चालू हो जाते हैं, उस ऐसे वैसे कर्मों से या ऐसे वैसे संकल्पों से या ऐसी वैसी दृष्टि से तभी से हमारा पतन हो जाता है, तभी से सजा मिलनी आरंभ हो जाती है। पश्चाताप की अग्नि तभी जलना, हमको जलाना आरंभ कर देती है। तो काल के पंजे से उठाना, तो बाबा कहते तुम भी कौन हो? काल के बच्चे, मास्टर महाकाल हो। कौन है हम सभी? मास्टर महाकाल। अपने प्रति, दूसरों के लिए नहीं, अपने उन व्यर्थ के विकर्मों की उसकी सूची होनी चाहिए हमारे पास, कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे अभी मैं, जिनके बंधन में बंधा हुआ हूं, अभी मैं परतंत्र हूं, वो स्वतंत्र नहीं हुआ, सच्ची स्वतंत्रता अभी तक हमने महसूस नहीं की। कौन कौन सी ऐसी जंजीरें हैं, बेड़ियां हैं जिनके अंदर मैं बंधा हुआ अभी तक भी, खुद ही निकालना है, दूसरा कोई नहीं निकालेगा, बाबा ने निकालेगा। बाबा ने केवल हमको रास्ता बताया, निकलना हमको खुद ही पड़ेगा, क्योंकि हम गए खुद हैं अंदर। बाबा ने नहीं हमको धकेला कि तुम विकारों में जाओ, हम खुद गए हैं, निकलना हमको है, निकालने की शक्ति उसने प्रदान कर दी है, लेकिन निकलना तो खुद को ही पड़ेगा। बाबा आकर हमारे सिर पर हाथ रख दे तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा, कल्याण तभी होगा जो वो कहता है उसको प्रैक्टिकल में करेंगे तो। इसलिए बाबा कहते साक्षात्कार का यहां कोई महत्व नहीं है, साक्षात्कार की कोई आश रखनी नहीं है, बाकी हो जाए तो कोई बात नहीं। किसी को इच्छा है साक्षात्कार करने की? है, अभी अभी करा दूंगा, बताओ किसको इच्छा है? किसी को नहीं है। तो साक्षात ज्ञान ही साक्षात्कार है। मुरली में क्या है? साक्षात्कार भगवान झांक रहा है, वो चार पेज की मुरली जैसे साक्षात वो 32 गुण वाला शिव बाबा झांक रहा है, उसमें से वो सर्व संबंधों की स्क्रीन झांक रही है उससे, वो लिबरेटर, वो ज्ञान का सागर, वो गुणों का सागर उसमें से मुझे निहार रहा है, वो मेरे से प्यार करने के लिए उत्सुक है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वो तो साक्षात्कार है। बाकी साक्षात्कार से क्या होगा अगर कृष्ण दिख भी गया तो? जब हम पहले दिन में 2-4 दिन हुए थे ज्ञान में, तो हमको श्री कृष्ण दिखा, शिव बाबा दिखा, लेकिन हमने कभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पढ़ाई से प्यार होना चाहिए हमारा। टीचर का मुंह देख लिया, टीचर ने हाथ सिर पर रख दिया, पास नहीं होगी कभी भी। ये तो संसार में भी हमको टीचर पढ़ाते थे, यहां तो सुप्रीम टीचर कह रहा है स्वयं, जो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो हमें साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है, मुरली ही साक्षात्कार है, हमारा जीवन ही प्रैक्टिकल साक्षात्कार है दूसरों के लिए। बिल्कुल, दिव्य दृष्टि से, दिव्य बुद्धि से, क्योंकि बाबा ने हम सबको आते ही सबसे पहले यही वरदान दिया, तो दिव्य नेत्र दिव्य बुद्धि, उसी से उसको याद करना है। वो ही बिजनेस क्रिएट करना कि वो मेरे अंग संग में है, वो मेरे साथ रासलीला कर रहा है, वो सारा खेल संकल्पों का है, अंदर ही अंदर संसार बसा हुआ है, बाहर नहीं झांकना, अंदर के संसार में क्या उथल-पुथल मची हुई है, क्या मैं अंदर कोई नया महोत्सव क्रिएट किया है, बाबा के साथ मिलन मना रहा हूं, कोई सेमिनार कोई चर्चा अंदर ही अंदर कर रहा हूं,
सारा खेल अंदर का ही है। बाहर के तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन अंदर का क्या परिवर्तन? तुम्हारा अंदर का चाहिए, अंदर के संस्कारों का परिवर्तन चाहिए। वो संस्कार कहां तक परिवर्तन हो रहे हैं? तो कितने हो गए? पांच ही हो गई, पांच हो गए, पांच। अब जो चार बता रहे हैं और पांच बता रहे हैं, उनका क्या किया जाए? एक खा गए आप ऐसे ही। तो पहला था गुणों का सागर है बाबा, दूसरा दिव्य दृष्टि दाता है, तीसरा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करने वाले, चौथा कर्मों की गुह्य गति के जानने वाले, पांचवा काल के पंजे से छुड़ाने वाले। तो ये पक्के याद करने हैं सारे, नींद में भी पूछना तब भी हम बता सके फिर कि 16 नंबर का गुण कौन सा था, और नंबर दे देने उनको बकायदा, भूलना नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टूडेंट लाइफ है, छोटे बच्चे की तरह पढ़ना है। नहीं तो होता है कि कुछ सालों के बाद हम सोचते हैं हमको सारा ज्ञान याद आ गया। अहंकार जन्म लेता है, अहंकार हमारी बुद्धि पर ताला लगा देता है फिर। इसलिए हमेशा छोटे बच्चे की तरह पढ़ना, कॉपी पेंसिल हमेशा हाथ में हो, थैला इधर हो, लगा हुआ टंगा हुआ हो, स्टूडेंट कैसे रहता है एकदम स्टूडेंट की तरह। सारी अलग अलग रंग के पेन होने चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स भी होनी चाहिए। पढ़ना लिखना नहीं आता फिर लिखो, समझो आज से हम पहली क्लास में दाखिल हो रहे हैं, तो सीखना वो भी जरूरी। तो पांचवा है काल के पंजे से छुड़ाने वाले, छठा है वो आनंद का सागर है। परमा आनंद की अनुभूति केवल हम संगम पर ही कर सकते हैं, और वो अनुभूति अशरीरी अवस्था में होती है। और अशरीरी अवस्था, ये जितना ज्ञान हम चिंतन करते जाएंगे, ज्ञान ही हमको अशरीरीपन की अनुभूति कराएगा। क्योंकि ज्ञान आ कहां से रहा है? निराकारी दुनिया से आ रहा है। किसके लिए है? निराकारी आत्मा के लिए है। अगर हम उस ज्ञान को पी जाएंगे अच्छी तरह से, कैसे पियेंगे? चबा चबा के पियेंगे। जो बाबा कहते गाय कैसे खाती है, जुगाली कैसे करती है? वो करती रहती है, करती रहती है। अगर करेगी नहीं तो बीमारू गाय कहेंगे। अगर हम ज्ञान सुन तो लेते हैं लेकिन चिंतन जरा भी नहीं करते हैं, तो हम कौन ठहरे? जन्म जन्म के बाबा कहते तुम रोगी बच्चे हो गए हो, मैं तुमको योगी बनाने आया हूं। तो चिंतन करना ज्ञान का, तो वो आनंद की अनुभूति अपने आप होने लगी। अशरीरीपन की अवस्था स्वतः, सोचा मैं अशरीरी हूं, देह के सारे संकल्प सेकंड में गिर जाएंगे सारे, बस वो अनुभूति अपने आप ही होने लगेगी। यहां से उतरने को मन करेगा ही नहीं, भले सब देहधारी दिखाई दे रहे हैं लेकिन देह से संबंधित कोई संकल्प नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कोई आत्मा दिखाई दे रही है, नहीं, देह से संबंधित कोई संकल्प नहीं चलेगा, आत्मा से संबंधित वो गुण वो शक्तियां सारी, दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही ऐसा हो जाएगा, चलते फिरते वो अनुभूति होने लगेगी। तो आनंद का सागर है। फिर बाबा कहते मैं सब के सुख का दाता हूं, सबको सुख देने वाला हूं। तो बाबा सबको सुख देते हैं और हम बच्चे सबको, हम भी तो सुख ही देते हैं, तो आप हंस क्यों रहे हो? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हम बाबा के बच्चे, हम भी तो सुख दाता है ना। सुख देना हमारी तासीर में समाया हुआ है, और सुख को स्थूल चीज से नहीं, मीठे बोल से बोल दो, किसी को रास्ता बता दो, दूसरों को अपनेपन की अनुभूति कराना। भले कोई भी है, वो बच्चा है, बूढ़ा, नौजवान, किसी भी धर्म प्रजाति का है, समुदाय का है, सब अपने हैं। नहीं तो मन में ऐसे ऐसे ख्याल चलते रहते हैं संसार के दृष्टिकोण से, तूफान मचा हुआ है संसार में धर्म संप्रदाय के नाम पर। लेकिन बाबा कहते तुम तो सारे संसार के पूर्वज हो, हमारे लिए सब अपने हैं। तो किसी के अपनेपन की अनुभूति करा देना, अर्थात उसको सुख की अनुभूति हो। जरूरी नहीं वो बाबा का पक्का बच्चा बन जाए, कोई मुक्ति में जाएगा, कोई जीवन मुक्ति में जाएगा, स्टैंप भी लगेगी। जो स्टैंप हम अपने स्वभाव संस्कार से, अपने तासीर से, अपने बोल से लगा देंगे उसको, उसी के अनुसार उसको अनुभूति अभी होगी। कम से कम वो सहयोगी बन जाएगा कोई, कभी ना कभी बाबा की उसको याद तो आएगी। तो स्टैंप अभी हमको अपने स्वभाव संस्कार से अभी लगानी है। तो बाबा है सबके सुख के दाता है बाबा। नेक्स्ट बाबा कहते हैं मैं शांति का दाता हूं। अब शांति कैसे मिलेगी? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इससे सोचने से हो जाएगा? तो कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी शांति का दाता हूं? कुछ तो करना पड़ेगा ना, चुप रहने से? हाँ जी, अपने सुधर में स्थित होने से। हमें जो भी हमारा व्यवहार है थोड़ा उसको कूल बनाना है, थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं, घर के समय रहते हैं, लोगों की धंधे दौरे में जाते हैं, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वहां स्थान पर जाएंगे वहां जरूरत होती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखनी है, थोड़ा सा धैर्य। इसलिए सवेरे सवेरे वो शांति का सागर मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं आत्मा उसमें समा गई हूँ, थोड़ा योग के प्रयोग करने हैं। और जिन आत्माओं के संबंध संपर्क में हम सारे दिन में आते हैं उनको भी उसमें डूबो देना है, वो आत्माएं भी जैसे शांति के सागर में डूब चुकी हैं। अगर कोई बागरी ना उसको पकड़ के डूबो देना है, अगर कोई मान हमारे से कुछ सुनना नहीं चाहता, दूरी बना के रहता ना, तो संकल्पों से तो रोक नहीं सकता, उसको पकड़ना और सीधा डुबो देना है, उस आत्मा को पकड़ के डुबो देना है। क्योंकि जो चीज हम स्थूल में करते हैं ना वो जल्दी फलीभूत होती है, वो भूलती नहीं है कभी भी। इसलिए सवेरे सवेरे संसार की सब आत्माओं को पकड़ के ऐसे पकड़ लेना। अच्छा, फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सारे संसार की आत्माओं को इकट्ठे करके थैले में बांध लिया और सीधा बाबा के पास ले गए, कुछ तो नवीनता चाहिए ना। अब कोई जा नहीं रहा तो क्या करे, बाबा ने कहा मैं तो मार मार के ले जाऊंगा, हम तो फिर भी प्यार से लेके जा रहे हैं, तो सबको बाबा के आगे फिर बोरी बाहर रख देनी और बाबा उनको दृष्टि दे रहे हैं, बाप मेरा बच्चा कितना होशियार है कि आत्मा मैं तो ला नहीं सका ही ले आया मेरे पास, क्योंकि उनकी उनका उद्धार कौन करेगा। तो ये था शांति का सागर, शांति मिली। नेक्स्ट है सर्व के सदगति दाता। बाबा कहते मैं सर्व आत्मों की सदगति करने आया हूं, सदगति अर्थात श्रेष्ठ मार्ग दिखाने के लिए। तो हम भी संसार में बाबा कहते तुम बच्चों को क्या करना है, बाप का संदेश देना है। तो हम भी सारे दिन में जब भी संबंध संपर्क में आते हैं, जो भी हमारे आस पड़ोस में है, तो किसी न किसी तरीके से उनको दो बाबा के लफ्ज ही सुना दें, जुड़ने के बाबा का पक्का बच्चा बना दें, खुशी खुशी उनको सुना दो ऐसे कि चलो हम आज भगवान को याद करते हैं, नए तरीके से याद करते हैं। उनको पूछो पहले जो भक्त आत्मा है आप कैसे याद करते हो, कि वो जो बताएगा और हम अपना बताएंगे, कुछ तो चर्चा बढ़ेगी ना आगे, तो ऐसे प्यार हमारा बढ़ेगा, तो सदगति का मार्ग खुल जाएगा, वो भी धीरे धीरे आएगा। पहले दोस्ती करनी पड़ती है ना। इस मामले में बहनें बड़ी होशियार होती हैं। बहनें कैसे करती हैं, परिचय देती हैं, माँ और बच्चे जाएंगे ना, बच्चे को बहुत प्यार करेंगे पहले, तो माँ अपने आप ही आ जाएगी फिर। तो ऐसे दूसरों से दोस्ती करनी है पहले, भले कोई भी है उसको अपना बनाए, उसके उसके घर के दुख सुनो अच्छी तरह से, उसको टाइम दो थोड़ा सा, वो सुनने से थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि संसार में बड़ा दुख बढ़ रहा है तो सुनने वाला कोई है नहीं। और बाबा कहते तुम तो मास्टर परमात्मा हो, मास्टर गॉड हो, तो हमें तो थोड़ा टाइम दे के किसी के दुख सुन ले, हो सकता है बाबा हमारे मुख से कोई ऐसा वाक्य उच्चारित कर दे कि दूसरों के दुख दूर हो जाए। तो बाबा क्या है, सर्व का सदगति दाता। कितने हो गए, 9। अच्छा, अभी स्पीड बढ़ा देंगे। फिर नेक्स्ट है बाबा पतित पावन है। बाबा का केवल एक ही कर्तव्य है, पतित आत्माओं को पावन बनाना। बाबा कहते फालतू प्रश्न मत करो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मैं स्कूल में पास हो जाऊं, ये मेरा काम नहीं है, विनाश कब होगा ये सारा ज्योतिषियों का काम, मेरा काम केवल एक ही है, कौन सा, पतितों को पावन बनाना। तो सवेरे साहब पतित आत्मा को पकड़ के बाबा के आगे रख देना कि तुम लाओ बाबा ये आपका काम, अब पकड़ के ले आया हूं मैं, अब इनको बनाओ पावन। तो बाबा पतित पावन है। नेक्स्ट है बाबा दिव्य बुद्धि दाता है। तो महसूस करना जैसे भगवान ने मुझे दिव्य बुद्धि दी है, अब इस दिव्य बुद्धि में केवल दिव्य संस्कार, दिव्य गुण, दिव्य ज्ञान ही बरसता रहेगा, इसमें कुछ दूसरी चीज नहीं ठहर सकती, इसमें केवल अमृत ही ठहरेगा, विष इससे ऑट हो चुका हुआ है। बाबा कहते तुम हो बाइसलेस, तो दिव्य बुद्धि दाता है वो। तो हमारी बुद्धि कौन सी है, दिव्य बुद्धि, जो बहन जी ने कहा दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र के द्वारा उसको याद करना, हमेशा उसको देखते रहना, उसको निहारते रहना, उससे बात करनी है, उससे चर्चा करनी है, उसको कुछ लिखना है। और यहां भट्ठी करने आए, तो भट्ठी करने से वापस जाएंगे तो वहां एक चीज लिखनी है, मेरी मधुबन की यात्रा कैसी रही, लिखना। अपने आप ही खुद मधुबन है, मैं मधुबन हूं, तो मैं मधुबन पुकार रहा हूं कि यहां आए थे भट्टी करने के लिए, फलाना आया था, फलानी आई थी, मैं देख रहा हूं यहां से मेरे से क्या लेकर गया वो मधुबन के चारों धाम मुझे देख रहे हैं कि यहां से मेरे से जो चार्जिंग ली घर में कहां, उस चार्जिंग को कहां यूज कर रहे हैं। तो कुछ नवीनता चाहिए उसमें, तो कहां थे, दिव्य बुद्धि। तो बुद्धि को दिव्य ही बनाए रखना है, वो तभी बनेगी जब हम चिंतन करते रहेंगे नए नए तरीके से। नेक्स्ट है, बाबा कहते हैं मैं हूं परम पिता, परम शिक्षक और सदगुरु हूं। तो जैसे वो शिक्षक है तो क्या उसकी शिक्षा को हम उतना सम्मान दे रहे हैं, उसी सम्मान के साथ उसकी शिक्षा को अपने जीवन से परिलक्षित कर रहे हैं, अपने जीवन से दूसरों को अनुभव करा रहे हैं, वो उसकी शिक्षा को चार चांद लगा रहे हैं, उसकी पढ़ाई को तवज्जो दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, उसकी पढ़ाई को हम स्वर्णिम अक्षरों में लिख रहे हैं। क्या उसकी सारी वाणी हमने खरीद के रख ली है, क्या उसकी वाणी को हमने पढ़ लिया है, या वाणी धूल फांक रही है, भाई कहीं तकिया के नीचे कहीं खटिक कहीं ढूंढना मुश्किल हो जाता है। उसकी पढ़ाई को, उसकी किताबों को हमने कितना सजा के रखा हुआ है। तो वो परम शिक्षक, परम पिता और सदगुरु है। बाबा कहते हैं मैं पत्थर बुद्धि को पार्स बुद्धि बनाने वाला हूं। हमारी बुद्धि कैसी हुई थी, कैसी बुद्धि थी हमारी, एकदम पत्थर से विनिष्ट हो गई थी। पत्थर तो फिर भी लुढ़कते लुढ़कते पानी में गोल हो जाता है, अभी आज तक हम गोल हो ही नहीं रहे, आत्मा नहीं समझ पा रहे अपने आप को। तो बाबा ने हम सबको पत्थर बुद्धि से पार्स बुद्धि बना दिया है। इस बुद्धि में वो पार्सनाथ का ज्ञान गूंजता रहे, दौड़ता रहे हो, तो पत्थर बुद्धि को पार्स बुद्धि बनाने वाला है बाबा कहते। नेक्स्ट है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। जैसे बाबा कहते मैं तुम बच्चों को क्या बनाता हूं, सतो प्रधान से तमो प्रधान। कैसे बोलते फिर, कैसे बोल दिया अच्छा ठीक सुन रहे, तमो प्रधान से सतो प्रधान, पत्थर बुद्धि से पार्स बुद्धि, लक्ष्मी से सारे फेल हो गए बोल रहे लक्ष्मी से नारायण बना हमें होती है कि उत्तर फटाफट दे दे, हम सोचेंगे बाद में तो बाबा के ज्ञान में खेल भी बहुत है, खेल खेल में ज्ञान को याद किया जा सकता है। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना, तोता उड़, चिड़िया उड़, तो आपने भैंस को भी उड़ा दिया तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने वाले। नेक्स्ट है, बाबा ज्ञानामृत के सागर है। जैसे वो ज्ञान अमृत का सागर है, मेरे मुख से भी निरंतर ज्ञान ही निकलता रहे, युक्ति युक्त, राज युक्त, योग युक्त, वरदानी बोल, सुख खरे बोल, किसी को रास्ता दिखाने वाले बोल, दुख हरने वाले बोल, तो वो ज्ञान का सागर है। वैसे ज्ञान की बरसात बाबा कहते तुम्हारे ऊपर निरंतर होती रहनी चाहिए। कितने हो गए, 16 हो गए ना, कोई 15, 16, 17, तीनों को जोड़ दो भी 16 हो गए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है, अकाल मूर्त है वो, तो हम भी कौन है, अकाल मूर्त, हमें भी कोई खा नहीं सकता है। डर किस चीज का है, हमारी तो मृत्यु पहले से हो चुकी है, नहीं हुई है, बाबा कहते तुम जीते जी मर चुके हो, संसार के कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ नहीं सकते हैं, अब रावण की दुनिया से निकल चुके हुए हैं। बाबा कहते बाप तुम्हें अपने से लव करना सिखाते, लेकिन माया कैसे, माया डैश डैश से लव करना, अपने से लव करना सिखाती, कैसे, दे अभिमानी बनकर अपने से लव करना सिखाती है। तो बाबा अकाल मूर्त है, तो हम भी उसी की तरह, उसी तरह अकाल मूर्त है, काल हमको वो खा नहीं सकता है, मृत्यु हमारी हो नहीं सकती है, लेकिन लंबे समय से वो अशरीरीपन का अनुभव होगा। तो नेक्स्ट है, बाबा शांति का सागर है। एक था शांति का दाता, ये है शांति का सागर है, दाता अर्थात देने वाला, सागर था तो वो तो अथा है, वो देता नहीं, वो तो हमेशा जिसको लेना अपने आप ही आएगा सागर के पास, तो शांति का सागर है। नेक्स्ट है, बाबा सत्चित आनंद स्वरूप है, फिर उस पर चिंतन को बढ़ाना है आगे, वो सत्य है, आनंद स्वरूप है वो, जैसे उसके चित्त में आनंद भरा हुआ है, हमारे चित्त में भी आनंद ही आनंद भरा हुआ है। नेक्स्ट है विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालना करने वाले, ये सारे छोटे बच्चे की तरह याद करने हैं, फिर इस पर आगे चिंतन करते रहना है। फिर नेक्स्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी अर्चयिता है, कितने हो गए 20 हो गए। फिर जीवन नैया को पार लगाने वाले, सबके सुख के दाता, प्रेम के सागर, निराकार, हाँ वो एक बार हो गया पहले, कितने हो गए, प्रेम के सागर, निराकार, जन्म मरण से न्यारे, 25 हो गए है ना। तो हम भी जन्म मरण से न्यारे समझ लो, कैसे, संगम पर, देह में है देह में नहीं है, अभी अभी देह में अभी देह से परे, अभी देह में अभी भी देह से परे। नेक्स्ट है दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है, शंख वो अभी अभी पहुंचने वाले बहन जी पहले पहुंच गया उधर। नेक्स्ट है शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश करने वाले और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हमारे तारा बहन जी। नेक्स्ट है बिंदु रूप ज्योति स्वरूप और ब्रह्म लोक के निवासी, 32 हो गए शायद। तो नए तरीके से बाबा को या अब इसमें हमारी बुद्धि बाहर नहीं जाएगी, एक तो इससे क्या होगी हमारी मन की एकाग्रता बढ़ेगी और इस योग में अवस्था बनाने के लिए निरंतर एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ऐसे टिप्स हमको जो परमानेंट हमारी बुद्धि में छप जाए, कभी भूले ना कभी भी वो, क्योंकि अंत में ऐसी परिस्थितियां आएंगी अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो भटकने के बहुत चांस हैं। इसलिए मन बुद्धि के पात्र को अच्छी तरह से ज्ञान से भरपूर कर देना, लबालब भर जाए वो, निरंतर बहता रहे, हमारे जीवन से दिखाई दे दूसरों को। तो अभी बहन जी को कुछ बताना होगा। ओम शांति।
ओम शांति। हमारे सुशील भाई जी ने बाबा के जो 32 गुण हैं, आपको ये पता है आज इतना अच्छा क्लास, अगर दुआएं जमा करनी है ना एक ही काम करो, बाबा जैसे कहता है ना कोई भी पहला मिलता है आप उसको बाबा का परिचय दे दो, ये 32 गुण का परिचय, और वो भी बाबा ने कहा कितनी, 1 मिनट 2 मिनट में, क्योंकि आज किसके पास टाइम नहीं है। और आप मार्क करना कि जैसे आपने और कोई बातों में जाओ ही नहीं, न विनाश की बात में जाओ, न धारणा की बात में जाओ, न संस्था के नियम की बात में जाओ, ये कुछ सुनाना ही नहीं है। कोई नया मिला बाबा का परिचय दिया, फट से सेविंग बैंक के खाते में यानी दुआओं के खाते में जमा हो जाएगा, इतनी खुशी मिलेगी सुनने वाले को और हमें स्वयं को भी बहुत खुशी मिलती है। क्यों, जब हम किसको सुनाते हैं मेरी आत्मा जरूर सुनती है, मेरी आत्मा जरूर सुनती है, ये कभी नहीं भूलना। तो ताली बजाएंगे हमारे भाई साहब ने, बहुत सुंदर सारे ज्ञान का सार, कोई भी मिला बाप का परिचय दिया बेड़ा पार, आपके सेविंग बैंक में जमा होगा है ना। एक बार और ताली बजा देंगे। प्रभु का ध्यान।